नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद नंबर 4 अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 3 और 4। एतदाख्या ही मे ब्रह्मन् जामातु ससुरस्य च विदेशस्तु जतः प्राणं ततेज दुस्त्य जानसति। इसका अनुवाद हे मैत्रेय, मनुष्य के लिए अपने प्राण त्याग पाना अत्यंत कठिन है। क्या आप मुझे बता सकेंगे कि ऐसे दामाद तथा ससुर में इतना कटु विद्वेष क्यों हुआ जिससे महान देवी सती को अपने प्राण त्यागने पड़े। 4 नंबर श्लोक मेरा पीछे दोहराइए। मैत्रेय उवाच पुरा विश्व सृजामशत्रे समेता परमाश्रय तथा मर गणा सर्वे शानुगा मुनया अग्नया। अनुवाद और तात्पर्य अभयचरण भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। मैत्र मुनि ने कहा, प्राचीन समय में एक बार ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले प्रमुख नायक ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिसमें सभी ऋषि चिंतक मुनि देवता तथा अग्निदेव अपने अपने अनुजायियों को सहित एकत्र हुए। तात्पर्य, विदुर द्वारा पूछे जाने पर मैत्रेय मुनि शिव तथा दक्ष के मन मालिन्य का विस्तार से वर्णन करने लगे जिसके कारण सती को प्राण देने पड़े। इस प्रकार उस महान यज्ञ का इतिहास प्रारंभ होता है जिसे ब्रह्मांड के सृष्टि करने वालों के नायक ने जिनके नाम मरीचि दक्ष तथा वशिष्ठ रहे संपन्न किया। इन महापुरुष ने एक विशाल यज्ञ की व्यवस्था की जिसमें अपने अपने अनुजय सहित इंद्र तथा अग्निदेव जैसे देवता एकत्रित हुए। ब्रह्मा तथा शिवजी भी उपस्थित हुए। हरे कृष्णा। प्रातःकाल ने सत्संग में श्री श्री कृष्ण बलराम का मंदिर का ओर से कृष्ण बलराम कक्षा में सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी का जो चर्चा चल रही है शीर्षक का नाम है दक्ष द्वारा शिवजी को साप। आज का श्लोक और 3 और 4, लेकिन ये पहल नंबर और दूसरा और तीसरा, ये 3 श्लोक में विदुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रश्न पूछ रहा है। क्या प्रश्न पूछ रहा है? आप लोग 2 श्लोक का अंदर सुन चुके हैं। तीसरा श्लोक में आता है, मनुष्य के लिए अपने प्राण त्याग पाना अत्यंत कठिन है। क्या आप मुझे बता सकेंगे? कौन बोल रहा है? विदुर जी बोल रहा है। किसको पूछ रहा है? क्या आप मुझे बता सकेंगे ऐसे दामाद और ससुर में इतना कटु विद्वेष क्यों आया जिससे महान देवी सती को अपने प्राण त्यागना पड़े? यह प्रश्न है। थर्ड प्रश्न है। सेकेंड प्रश्न है, भगवान शिव समग्र संसार के गुरु शत्रु रहित शांत एवं आत्मतुष्ट व्यक्ति है। ये देवताओं में सबसे महान है। ये कैसे संभव हो सकता है ऐसे मंगलमय व्यक्ति के प्रति दक्ष वैर भाव रखता है? ये दूसरा है। और पहल नंबर, जो दक्ष अपनी पुत्री के प्रति इतना स्नेह भाव तथा शैलबान में श्रेष्ठतम भगवान शिव के प्रति इतना ईर्ष्यालु क्यों था? उसने अपने पुत्री सती का अनादर क्यों किया? ये पहल नंबर प्रश्न है। तब ये 3 प्रश्न का उत्तर फिर आगे उत्तर मिलेगा। इसलिए 4 नंबर श्लोक में आया मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि ने उसका उत्तर देना शुरू करेंगे। लेकिन पहले आपको बताना चाहता हूं, ये यज्ञ कब हुआ था? अभी यहां पे जब 1 नंबर 2 नंबर श्लोक में व्याख्या कोई कर रहे थे, हम भी सुने हैं, श्लोक का ऊपर से फिर आगे बढ़ जाता है कथा, लेकिन श्लोक का ऊपर आप फेंक करके श्लोक का ऊपर टॉपिक रखे कहने से उसका और ज्यादा क्या होता है, महत्व होता है। हम आगे बढ़ जाएंगे तब और दूसरा कोई कथा कराएगा वही कथा को हमें रिपीट फिर सुनते रहेंगे। कहने का अर्थ है इसी श्लोक का व्याख्या किस प्रकार हो सकता है, हमें 10 मिनट बोल सकते हैं, हो सकता है 20 मिनट बोल सकते हैं, लेकिन इसी श्लोक में क्या बोला जाता है। इसलिए और पहले जो जो बता गया है इसका ऊपर व्याख्या नहीं कर रहा हूं। आज का श्लोक में टॉपिक है ये दक्ष को, दक्ष ने शिवजी को साप दे रहा है, इसका शीर्षक है ना। लेकिन दक्ष कब यज्ञ किया था और दक्ष पहले यज्ञ में आया था और वो यज्ञ कौन किया था, सरा मुनि ऋषि, ये नमस्यारण्य में जो यज्ञ हुआ था तो सरा मुनि ऋषि उसी यज्ञ में आए थे, स्वयं ब्रह्मा जी आए थे, यहां पे बता दिया ना, उसी में ब्रह्मा जी भी थे और शिव जी भी थे, यहां पे बता गया। अपना अपना अनुजय के साथ सारा देवता लोग मुनि ऋषि इंद्रदेव अग्निदेव और ब्रह्मा जी और स्वयं शिव जी भी उसी में थे, लेकिन जब दक्ष ने उसी यज्ञ में आया तब ब्रह्मा जी से लेकर सारा देवता लोक भी उनको सम्मान किए, किसको सम्मान किए, दक्ष प्रजापति को, दक्ष को सम्मान किए, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति सम्मान नहीं किया, कौन, शिवजी ने सम्मान नहीं किया, तब दक्ष क्रोधित हो गया, तब जाकर दक्ष क्रोधित हुआ। क्यों क्रोधित हुआ, उसका अंदर घमंड भाव था, वो नहीं देख रहा है शिवजी और ब्रह्मा जी और सारा देवता मेरा से ऊपर है, वो भी नहीं देखा और अंदर में घमंड भाव, आसुरी भाव स्वभाव वो प्रकट कर दिया, उसके सामने प्रकट करके और साप देना शुरू किया। किसको साप दे रहा है, शिवजी को, और शिवजी तो परम वैष्णव है, साप देना मतलब परम वैष्णव का चरण कमल में अपराध कर रहा है। आज का चर्चा सिर्फ अपराध का ऊपर होगी, वैष्णव रीति रिवाज में किसी प्रकार कभी निंदा नहीं करना, वैष्णव निंदा नहीं करना, साधु लोगों को निंदा नहीं करना, भक्त का निंदा नहीं करना, अपराध से कैसा बचना, अपराध करने से फल क्या होता है, अपराध का फल का बारे में चैतन्य भागवत में वर्णन है, इसका ऊपर ही आज चर्चा होगी। पहले आता है विदुर ने जो सारा प्रश्न पूछने का बाद है मैत्रेय मुनि ने उसका उत्तर देंगे, आगे 5 नंबर श्लोक से वो शुरू हो जाएगा, उसका उत्तर 5, 6, 7, 8, 9 इसी प्रकार आगे बढ़ेगा उसका। लेकिन वैष्णव अपराध का क्या फल होता है, इसके बारे में श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद 4 अध्याय श्लोक नंबर 27 और 28 में वर्णन है, वैष्णव अपराध करके कौन सा गति को प्राप्त करते हैं। इस श्लोक में आता है जदा देवेशु वेदेशु गोषु विप्रेशु साधुषु धर्मे मयी च विद्येषु स्वभाव आश्र विनश्यति, ये है 27 नंबर श्लोक, और 28 नंबर श्लोक है भक्त का कभी भी कोई बैर नहीं है, इसलिए आता है भागवत में ये श्लोक में आता है निर्वैर, भक्त का कोई बैर नहीं, बैर मतलब वही दोष दृष्टि देख नहीं सकता है भक्त का। और यहां पे आता है न बैराय प्रसन्नताय स्वसुताय महात्मने प्रहलादाय जदा द्रुहेद निश्चे अपि विरोचितम, इसका व्याख्या श्रील प्रभुपाद लगभग एक पेज में करते हैं व्याख्या इसी श्लोक का। इसमें बताया जाता है भक्त का पास कभी भी अपराध नहीं करना, और स्वयं हिरण्यकशिपु किसका पास अपराध किया, किसके पास कर रहा है, ब्रह्मा जी के पास नहीं, किसके पास अपराध कर रहा है, भक्त प्रहलाद के पास, लेकिन हिरण्यकशिपु तपस्या किया था, वर मांगा था, फिर भी अपराध से बचने के लिए वर नहीं मांगा था। नहीं, अपराध से कोई भी बचा भी नहीं सकता है, भक्त का अपराध, भक्त चरण कमल में अपराध कोई भी बचा नहीं सकता है। इसमें बुरी बुरी बहुत सारी प्रमाण है। अम्बरीश महाराज का पास कौन अपराध था? दुर्वासा में नहीं। और सौभरी मुनि का पास, सौभरी मुनि किसका पास अपराध किया था? स्वयं गरुड़ जी के पास। बहुत सारी प्रमाण है। श्रीवास पंडित के पास, सची माता किसका पास अपराध किया था? ये सारे अपराध आप देखेंगे हजार हजार, किसी के पास अपराध करे बच नहीं पाए। इसीलिए बताते हैं, हरिस्ताने अपराध है नाही तारे हरि नाम, तुमास्ताने अपराध है नाही परित्राण। भक्त के चरण में हमें अपराध करेंगे परित्राण नहीं, परित्राण मन में मतलब रक्षा नहीं, बच नहीं सकते हैं। हरिस्ताने अपराध है तारे हरि नाम, ये हरि नाम का ऊपर में अपराध करते हैं, नाम में अपराध करते हैं, ये अपराध खंडन होगा उसी नाम में, उसी नाम में ही खंडन हो जाएगा। इसलिए बताते हरिस्ताने अपराध है तारे हरि नाम, हरि का नाम में हम जब अपराध करते हैं उसी नाम में ही खंडन हो जाएगा। लेकिन तोमास्ताने अपराध है, तोमास्ताने मतलब क्या है? वैष्णव साधु गुरु चरण कमल में हम अपराध करें नाही परित्राण। और तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ना मम वैष्णव पराम। भगवान कृष्णा एक ही जगह में विश्राम करते हैं, ये प्रमाण दिया जाता है, एक ही जगह में विश्राम करते हैं। कौन सा जगह में भगवान कृष्ण विश्राम करते हैं? साधु का हृदय में। इसलिए बोलते हैं साधवम हृदय त्वयम, साधु का हृदय में विश्राम करते हैं, विश्राम का जगह है साधु का हृदय। फिर बताते तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद हृदय में वास करते हैं और विश्राम लेते हैं। तो गोविंद कहे ना मामा वैष्णव पराम, और सबसे बड़ा मेरा प्रिय है भक्तजन वैष्णव पराण, जो वैष्णव है विष्णु का भक्त है वो मेरा प्राण है, प्राण मतलब वो मेरा प्राण है, ये भजन में आता है। तो हमें इससे बचना है, अपराध से बचना है। और अपराध का जो फल है कहां कहां लेकर फेंक देता है हमें कल्पना नहीं कर सकते। चैतन्य भागवत में ऐसा ऐसा चीज दिया गया हम कल्पना नहीं कर सकते, कौन सा नरक में चले जाना पड़ता है, कौन सा नरक में चले जाना पड़ता है। अभी इसका ऊपर एक ही आता है, श्रीमद् भागवत में भी है और फिर चैतन्य भागवत में भी है, लेकिन चैतन्य भागवत की जो श्लोक है इसे आप समझ सकते हैं। आनिंदिक हया जे सुकृत कृष्ण बोले, सत्य सत्य कृष्ण तारे उधारी बहले। चारी वेद पढ़ी आयो जदि निंदा करे, दंते दंते कुंभी पाक डुबिया से मरे। चार वेद पढ़ लिया, सारा शास्त्र पढ़ लिया, पढ़ने का बाद फिर भी भक्त का निंदा करते रहा, इसको क्या होगा? दंते दंते दांत में पकड़ के कुंभी पाक नरक में उसको डुबाते रहेंगे, डूबकर रहेगा वहीं पे, वो आ नहीं सकता है। इसलिए बताते हैं भगवत गीता पढ़ लिए, भगवत गीता का 700 श्लोक याद कर लिया, भगवत गीता को ऐसा मनन किया है, लेकिन भगवान कृष्ण को माना नहीं, आचरण फलो नहीं किया, भगवान को भगवान ने जो बोला है इसको फलो भी नहीं किया। इतना पढ़ते पढ़ते हम चलते रह रहे लेकिन आचरण नहीं किया, तो क्या होगा गति? भगवान को नहीं मानता है तो क्या होगा? इसी प्रकार चार वेद हमें पढ़ लिया, अष्टादश पुराण पढ़ लिया, 108 उपनिषद पढ़ लिया, गीता भागवत पढ़ लिया, महाभारत रामायण पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ पढ़ते गए, लेकिन पढ़ने का बाद हमें जब साधु का निंदा का चर्चा कर रहा है, भक्त का दोष देख रहा है, तो वो क्या गति होगा? चलिए बताते, चार वेद पढ़िए और जदि निंदा करे, पढ़ने का बाद हमें निंदा कर रहा है
तो क्या गति।
कहरना करे निंदा कृष्ण कृष्ण बोले अद्वैय चैतन्य से ही जीतिबे कहले। निंदाय नाही के लभ्य सर्वशास्त्र कहे स्वभार सम्मान भागवत धर्म है। निंदा करने का बाद हमारे लभ्य कोई भी गति और नहीं और स्वभार सम्मान, हमें यहाँ पे सम्मान मांग रहा था दक्ष, दक्ष प्रजापति को सम्मान चाहिए था। भक्त के पास क्या सम्मान क्या हानि क्या, ये मतलब इसलिए चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक में लिखते हैं। आठ श्लोक गला में धारण करने के लिए लिखा गया है। आठ श्लोक में सारा चीज चैतन्य महाप्रभु दे दिए, ऐसी आठ श्लोक। इसलिए थर्ड नंबर श्लोक आता है, तुरंत भी सुनी चेना तरूप सहिष्णु अमानिना मान देना कीर्तनीय सदाहरी। लेकिन ये सभागृह में जाता है तो दक्ष तो वो उसको सम्मान चाहता। इसलिए सभार सम्मान भागवत धर्म है, हमको सम्मान नहीं चाहिए। कोई भी सम्मान करे नहीं करे उसमें देखना नहीं चाहिए। फिर भी दक्ष वहां पे सम्मान चाहिए था। किससे सम्मान चाहिए था? अपना दामाता से। किससे? अपना दामाता से, जो ब्लड रिलेशन है। शिवजी सम्मान नहीं दिया तब उनको साप देना शुरू कर दिया। और नहीं समझ पाए शिवजी कितना उच्च स्तर के भक्त है। वैष्णवाना जथा शंभु, सबसे उच्च स्तर वैष्णव है और उसका चरण कमल में। आगे आएंगे विस्तार भाव से। दक्ष ने फिर सोचा है, फिर दक्ष स्वयं यज्ञ कर रहा है, इसलिए आमंत्रित नहीं किया। किसको आमंत्रित नहीं किया? शिवजी को आमंत्रित नहीं किया, अपना दामाद है। इसलिए सती ने अपना शरीर को आग में जला रहा चाह रहा है और आग में जला रहा है। क्यों जला रहा है? ये यज्ञ बाद में हुआ, दक्ष ने स्वयं अपना यज्ञ किया और शिवजी को आमंत्रित नहीं किया। और सती ने क्यों जला रहा है? सती दक्ष का पुत्री है लेकिन शिवजी का पत्नी है। लेकिन शिवजी को जब आमंत्रित नहीं किया तब सती को कैसे आमंत्रित किया जाएगा? ये पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य क्या है? इसमें आता है एक गुण है, जब पति को आमंत्रित नहीं किया गया पत्नी कैसा जा सकता है उसी यज्ञ में? लेकिन अभी संसार में, अभी का समय में क्या है, पत्नी पति को बिना पूछे भी जा सकता है अपना बाप का घर। मेरा बाप का घर में कुछ हो रहा है मैं जाऊंगा अभी का युग में। लेकिन ये पतिव्रता स्त्री का एक गुण है, बिना पति से पूछे। और सती ने स्वयं पूछे शिव जी को, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं? सती ने जब शिव जी को पूछे, शिव जी ने बोले, सारे उत्तर दिए, ऐसा ऐसा हुआ तब आप कैसा जा सकते? जो कठोर वचन बोलता है उसका घर में जाके क्या फायदा है? सती को तब तक मालूम नहीं था, तब स्वयं पति का बात सुन के बोला, नहीं मैं जाऊंगा, थोड़ा देखता हूं दक्ष को कैसा, मेरा पिताश्री है लेकिन फिर भी मैं देखता हूं। ऋषि का साथ, शिव जी ने सब कुछ भूत प्रेत का पिशाची को सब साथ ये करके भेज दिया, फिर वो जगे। ये आगे आएगा वर्णन, उसका मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता हूं। फिर भी चैतन्य चैतामृत में भी सुना होगा, किसी प्रकार हमारा भक्ति को नाशक करता है वैष्णव अपराध। भक्ति का मूल नाशक है वैष्णव अपराध। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़ाए बा छिंडे तार सुखी जाए। क्या है सुखी जाए? पता, पता भी सुखी जाएगा। यदि कोई भक्त इसी जगत में भक्ति लता का सेवन करते हुए किसी वैष्णव के चरण में अपराध करता है तो उसके अपराध की तुलना उस पागल हाथी के हाथी से की जाती है, जो लता पता को उखाड़ कर उसे छिन्न भिन्न कर देता है। इस प्रकार लता की पतियां सूख जाता है। विष्णु वैष्णव निदा ग्राम्य व्रता न सुनिब, प्राणी मात्रे मनोवाक्य उद्वेग ना दिव। किसी भी वैष्णव हो नहीं हो, प्राणी मात्र के उसका मन का वाक्य में कभी उद्वेगना नहीं देना चाहिए, तब वो है वैष्णव, वही है साधु, वही है भक्त। किसी भी जीव का मन में, फिर भी मनुष्य का मन में नहीं, किसी भी जीव भी, जितना सारा जीव भी है उसके भी दुख कष्ट नहीं देना चाहिए। और विष्णु और वैष्णव का भक्तता दूर की बात है। और फिर बोलते थे ग्राम्य कथा, ग्राम्य का वार्ता ना सुने वे। सुनने से क्या होता है, हमें जब भक्त के बारे में कभी सुनते हैं, धीरे धीरे हमें चार पांच लोग बैठने का बाद हमारा धीरे धीरे सुनते सुनते लास्ट में पहुंचते कहां पे मालूम है, वैष्णव अपराध के पास पहुंच जाते हैं। वैष्णव अपराध करने का शुरू हो जाता है। हम चार पांच भक्त लोग बैठेंगे, किसी भक्त का अच्छा चीज चर्चा करते 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 फिर वैष्णव निंदा के पास पहुंच जाते हैं। इसलिए बोलते हैं कोई वार्तालाप ग्राम्य कथा शुरू हो जाता है, वहां ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लास्ट में पहुंच जाते वैष्णव अपराध में। इसलिए बोलते थे ग्राम्य बाता ना सुनी वो, प्राणी मात्र मनोवाक्य उद्वेग ना दिव, किसी भी प्राणी में उद्वेगना नहीं देना चाहिए, तब जाके हमें वैष्णव में गिनती होंगे। जिस प्रकार मनुष्य में गिनती होगा चार नियम पालन करने से, तो वो वैष्णव में गिनती होगा कब, किसी जीव का मन में उद्वेगना नहीं देगा तब जाके वैष्णव में गिनती होगा, तब जाके वैष्णव में गिनती होगा। हम सोच रहे हैं हमें वैष्णव है, ड्रेस पहन लिया, माला ले लिया, जब बैग भी ले लिया, क्या वैष्णव बन गए, न साधु बन गए, न भक्त बन गए। जब इससे दूर रहेंगे तब हम वैष्णव बन जाएंगे, वैष्णव में गिनती होंगे। और एक आता है वैष्णव निंदा करीबे का यार गण, तार रक्षा सामर्थ्य नाहीं कौन जन। ये भागवत में पंचम स्कंद में वर्णन है, तारा रक्षा सामर्थ्य नाही को कौन जन, सुलो पानी सम यदि वैष्णव निंदे, तथापि नाशे जाए कहे शास्त्र वृंदे। यह ना मानिए ये सुजन निंदा करे, जन्मे जन्मे से पापिष्ट दैव दोष मरे। जो वैष्णव की निंदा करता है उसे कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता है। जैसा प्रहलाद महाराज का चरण में हिरण्यकशिपु ने अपराध किया, बच नहीं पाया। चलिए बताते हैं, संसार में कोई भी व्यक्ति किसी के शरण में चले जाए, चार चीज से बच नहीं सकता है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा व्याधि, ये चार चीज से बच नहीं सकता है। किसी का भी शरण में चले जाए, कितना भी देवता लोग का शरण में चले जाए, कितना पुत्र पितृपुरुष का शरण में चले जाए, भूत प्रेत का मतलब वो पूजा विधि में लग जाए, फिर भी बच नहीं सकता ये चार चीज से। और चार चीज से बच सकता है सिर्फ प्रभु का शरण में आने से। प्रभु कौन है, स्वयं कृष्ण, कृष्ण का शरण में आने से ये चार चीज से बच सकता है। और वैष्णव अपराध से फिर भी बच नहीं सकता है, इसलिए बताते हैं वैष्णव अपराध से भी बच नहीं सकता है। जो वैष्णव की निंदा करता है उसे कोई बचा नहीं सकता है। भगवान भी स्वयं बोल रहा है, मैं भी बचा नहीं सकता हूं, मैं भक्त का अधीन हूं। आप जिसका चरण में अपराध किया उसी का पास जाना पड़ेगा क्षमा प्रार्थना मांगने के लिए। अद्वैत आचार्य जब सची माता का पास अपराध किए, अद्वैत आचार्य का पास सची माता ने जब अपराध किए, सची माता स्वयं जब भगवान चैतन्य महाप्रभु को पास गए मिलने के लिए, चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं मेरा से दूर रहो, क्यों, स्वयं मां और बेटा का संबंध है। फिर भी चैतन्य महाप्रभु बोले मेरा से दूर रहो, क्या हो गया, क्या गलती हो गया, तुम इतना बड़ा वैष्णव का चरण में अपराध किया। जो अद्वैत का भजन में मैं ये धरती में आना पड़ा, तब आप उसी व्यक्ति का चरण में आप अपराध किया।
और सती माता जाता है फिर एक बार दो बार तीन बार जाके अद्वैत आचार्य का चरण कमल में प्रार्थना करता है, मेरा को क्षमा कीजिए, प्रार्थना करता है। और दुर्वासा मुनि उसी प्रकार गया था सबका पास, स्वयं शिव जी का पास गया, ब्रह्मलोक गया, विष्णु लोक भी चला गया, लेकिन विष्णु बोले मैं ये क्षमा जतना कर नहीं कर सकता, आप उन्हीं का चरण में जाना पड़ेगा, इन्हीं को क्षमा प्रार्थना करना पड़ेगा। दुर्वासा मुनि पूरी आके वैकुंठ लोक से फिर वापस आके अम्बरीश का चरण कमल में प्रार्थना करते हैं, तब अम्बरीश महाराज फिर ये बताते हैं, चाहे वो शिवजी के समान बलशाली क्यों न हो, यदि वह वैष्णव की निंदा करता है तो उसका विनाश तो होना ही है। यदि शास्त्र का निर्णय है, यदि कोई शास्त्र के निर्णय की अवहेलना करके वैष्णव की निंदा करता है तो उसका विनाश निश्चिंत है। शास्त्र भी सुन रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है, फिर भी निंदा का पीछे भाग रहा है, निंदा कर रहा है, तो वो उसका निश्चिंत है विनाश, और कुछ गति नहीं है। तो यहां पर ऐसा ही हुआ, शिवजी के पास दक्ष प्रजापति ने अपराध किया, कितना बड़ा वैष्णव है, उनका चरण में अपराध किया। और दूसरा ये मैं आपको बता रहा था, जब सौबरी मुनि अपराध किया था, किसका चरण में, गरुड़ जी का चरण में, गरुड़ जी के चरण में, मतलब गरुड़ जी किसके लिए गया था, सौबरी मुनि कितना साल तपस्या किया था, किसका अंदर, पानी का अंदर, कहां पे तपस्या किया था जानते, कहां पे तपस्या किया था, यही जमुना में, हमारा साइड में जो जमुना बह रही है उसी जमुना में तपस्या किया था, जमुना जल में डुबकी लगाकर तपस्या किया था, जो जमराज का बहन है, और इसी का पानी का अंदर डुबकी लगा के तपस्या कर रहा है, इतना बलशाली बना गया था, अष्टांग योग सिद्धि सब कुछ प्राप्त कर लिया था, एक ही साथ में सब कुछ बन सकता है, इतना तपस्या किया था, लेकिन छोटी सी गलती किया, छोटी सी क्या गलती किया, जब गरुड़ जी आए जमुना जी जमुना से मछली खाने के लिए, उनका आहार है खाने के लिए आए, तो वो वहां पे मना कर दिया गरुड़ जी को, तुम वहां पे तुम्हारा खाद्य आहार नहीं है, इधर यहां से भाग जाओ। गरुड़ जी इतना बड़ा भक्त है, स्वयं भगवान का सवार मतलब क्या है, वाहन है, और उनका मना कर रहा है, इतना बड़ा पल, इतना साल तपस्या किया, लेकिन दो मछली के अंदर जो सहवास उसको बोलते हैं, जब हो रहा था उसको देख के उनका सारा तपस्या भग्न हो गया, एक ही सेकंड में सारा तपस्या भग्न हो गया, और उनका अंदर कामना वासना सब कुछ जागृत हो गया। मथुरा का राजा मांधाता, मांधाता का पुत्र को शादी करने के लिए आ गया, मांधाता का पुत्र को शादी करने, और मांधाता का जितना पुत्री 50 पुत्री थे, और मांधाता बोले तुम एक ही पुत्री को शादी कर लो, और जब एक ही पुत्री को उसका सामने दिया गया और पुत्री ने बोल दिया, मांधाता इतना वृद्ध हो गया था, मतलब आप जो चमड़ी है ना क्या हो रहा था हिल रहा था, मतलब वृद्ध होने के बाद क्या होता है, दांत निकल जाता है, बाल भी उखड़ गया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन फिर भी उसी उम्र में शादी करना है, तब मांधाता का लड़की ने मना कर दिया, और मांधाता ने बोले जब आप युवक बन जाओगे, युवक को मैं मेरा बेटियां को शादी दिलाऊंगा, तो एक ही सेकंड में, ज्यादा समय नहीं लगा, इतना योग साधना में था दृढ़ता, और एक ही सेकंड में युवक शरीर को प्राप्त कर लिया। युवक शरीर को प्राप्त करने के बाद मांधाता ने 50 पुत्रियों को शादी कराया, किसका साथ, सौबरी मुनि का साथ। इसका बड़ा उदाहरण ये मतलब स्टोरी सी है, लेकिन यहां पे बताने का अर्थ है, सौबरी मुनि ने यहां पे अपराध करने का फल ये सब हुआ। हमें सोच रहे हैं, हमें 10 साल से भक्ति कर रहा है कि 20 साल हो गया भक्ति कर रहा है, लेकिन हमारा घड़ा नहीं भर रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। लंगर को जैसा बोलते हैं ना, नौका में हमें बैठ गए लेकिन यहाँ पे रस्सी में बंधा गया हो, लंगर अभी खुले नहीं, जहां वहीं पे हम रह गए। जब तक लंगर नहीं खोलेंगे तब तक आगे कैसा बढ़ेंगे, वैष्णव अपराध से कैसा बचेंगे, जब ये नहीं है तो हमें आगे कहां तक पहुंचेंगे, यहीं पे विराजमान फिर रहेंगे, यहीं धरती भी छोड़ नहीं सकते। वैष्णव अपराध से बचने के लिए प्रयास, तब जाके हम धीरे धीरे आगे जाएंगे, नहीं तो हमें कितना भी भक्ति कर रहा है लेकिन अंदर में ये भावना भी नहीं आता है। इसलिए वैष्णव लोग को, इसलिए सुबह हर भक्त क्यों वांछा कल्पतरु करता है, अर्थ क्या है, क्यों करता है, दिन भर तक जितना अपराध एक ही सेकंड में नाश करने के लिए सुबह हम प्रणाम कर लेते हैं, क्या हो गया, क्या ये की टैबलेट खा लिया पूरे दिन भर तक करते रहेंगे अपराध। मन में ये थोड़ा चिंतन कीजिए, हमें सुबह सिर्फ एक बार बोल देते हैं वांछा कल्पतरु, बस वैष्णव तो वांछा कल्पतरु है, फिर हमें निंदा चर्चा में लागी जाएंगे तब क्या होगा। इसे चर्चा से बचने के लिए मन में विचार लेना चाहिए और प्रभु का भजन करना चाहिए, बढ़ना चाहिए। कथा को यहीं पे हम विराम देंगे, ज्यादा से ज्यादा ये 5 मिनट और रह गया, 5 मिनट के अंदर आप लोग का कुछ प्रश्न है फिर पूछ सकते हैं, नहीं तो एक लास्ट में जो प्रचारक है उनके लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरा मन में आया है। जैसा बोलते हैं हम पंखा लगाया है, पंखा लगाने के बाद पंखा का हवा ऊपर जाएगा तब पंखा लगाने का फायदा क्या है, बोलिए। पंखा लगा गया है, पंखा का हवा ऊपर जाएगा, मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, जन्म में जब कृष्ण भक्ति नहीं किया करेगा, कृष्ण भक्ति नहीं किया तो वह मनुष्य जन्म का लाभ क्या है। कभी भी एग्जाम्पल ये कहां भी आप दे सकते हैं, पंखा लगा दिया घर में, इसी प्रकार भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है किसके लिए, मनुष्य जन्म में पाके हमें कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे क्या फायदा है। इसलिए प्रभु का भक्ति करने के लिए, प्रभु का शरण में आने के लिए, भगवान का चरण को पकड़ने के लिए ये मनुष्य जीवन मिला, एक ही लक्ष्य के लिए, प्रभु आप मेरा को अपनाइए और आपका चरण में वास दिलाइए, प्रभु को रोते रोते ये प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले नयनम गलदर्श धरया, कितना साल हो गया मैं माला झोली लेकर कर रहा हूं लेकिन नयन से आश्रु आ रहा है, शरीर से पसीना आ जाता है लेकिन आंख से अश्रु नहीं आता है, कब वो समय आएगा। पहले हम सारा वैष्णव का चरण में प्रार्थना करना है, प्रभु वैष्णव का चरण में क्या अपराध हो रहा है, मेरा भजन भी नहीं हो रहा है, भक्ति नहीं हो रहा है, फिर भी माला झूले को हम नक्शा जैसा बनाते हैं ऐसा चला रहा है, चल रहा है गाड़ी, बस कब होगा। सिर्फ वैष्णव लोग का आशीर्वाद से, भक्त का आशीर्वाद से, गुरु का आशीर्वाद से, इसलिए गुरु का कृपा से तब फिर हम सबसे बच सकते हैं। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की संवेद गौर भक्त वृंदे की निताई गौर प्रेमानंदे।